आज जो सब्जेक्ट हम आपके लिए लेकर आए हैं वो है एनवायरमेंटल साइंस, और हम बात करेंगे जैव विविधता और संरक्षण के बारे में। और जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारी एक्सपर्ट मिस नीलम गुप्ता जी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
थैंक यू। तो आज हम जो विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं, यानी जैव विविधता का संरक्षण किस तरह से किया जाए। और ये जो लेसन है वो लेसन नंबर 15 है आपका डिस्पैच नंबर 2 का, और ये जो जिस मॉड्यूल का है वो है मॉड्यूल एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। संरक्षण की हम बात कर रहे हैं तो क्योंकि हम सभी को मालूम है कि इस पृथ्वी पर नाना प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे, सूक्ष्मजीव, पता नहीं कितनी हजारों करोड़ों प्रजातियां दिखती हैं और इस पृथ्वी पर रहते हैं। और यही नहीं, पृथ्वी के हर कोने में, अगर पृथ्वी की नहीं आप बात करें कि हर जगह पर, यानी कि अगर हम नभ से लेके जल की बात करें या थल की बात करें, पहाड़ों की बात करें, आप मरुस्थल की बात कर लें, आप जंगलों की बात करें, या जहाँ भी देखोगे या समुद्र की गहराई में भी देखें तो बहुत तरह के जीव जंतु, पेड़ पौधे, यानी कि जीवधारी इसमें दिखाई देते हैं। और हमें यह भी पता है कि सभी जीव एक से नहीं हैं, ना ही तो वो रंग रूप में, ना ही आकार में, ना ही स्वभाव में, उनकी प्रकृति भी काफ़ी है, और ना ही उनका व्यवहार एक सा होता है। यानी अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग तरह के जीवधारी इस धरा में मौजूद हैं। और ये जो है, इसीलिए जो जीवों में पाई जाने वाली असाधारण जो विविधता देखने को मिलती है वो पृथ्वी ग्रह पर ही है। और ये जो पृथ्वी है यही क्या करती है, ये जो विविधता है ये ही एक अभिन्न और महत्वपूर्ण भाग की रचना करती है। लेकिन आजकल क्या है कि जो मानव जनसंख्या है वो बढ़ रही है, उसकी आवश्यकताएं बढ़ रही हैं, तो जिसके चलते ये जो बायोडाइवर्सिटी है आज ये भी खतरे में आ गई है। हम देखते हैं कि बहुत सारे जीव जो पहले दिखाई देते थे आज नहीं दिखाई देते हैं, और कुछ की संख्या इतनी कम हो गई है कि शायद आने वाले समय में हम उनको सिर्फ फोटोज में देखें या किसी वीडियो में या किसी उस तरह के उसमें आर्काइव में हमें उनके चीज़ें देखने को मिले कि इस तरह का जीव भी पृथ्वी पर पाया जाता था। जैसे कि आप डायनासोर का एग्जाम्पल देख सकते हैं कि वो पहले कभी पृथ्वी पर रहते थे लेकिन आज वो विलुप्त हो चुके हैं। तो इस चर्चा के दौरान हम बात करेंगे कि किस तरह से मानवीय क्रियाकलाप जो है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ के चलते जो बायोडाइवर्सिटी है वो कितनी ज़्यादा लॉस हो रही है, उसका कितना क्षति हो रहा है, और साथ ही साथ उन प्रयासों के बारे में बात करने की कोशिश करेंगे जो कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए और उसकी सुरक्षा के लिए ज़रूरी है। तो सबसे पहले, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी बात कर रहे हैं तो ये कॉन्सेप्ट क्या है, यानी बायोडाइवर्सिटी क्या है कि जो पृथ्वी पर पाए जाने वाले इतना विशाल जो जगत है उसमें सजीव जीव, जो लिविंग जीव हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो पौधे हों, जीव जंतु हों, उनकी जो सारी स्पीशीज़ हैं या वैरायटीज़ कह सकते हैं, उसी को हम सामूहिक रूप से कहते हैं बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि वही सब मिलकर इसको बनाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो पृथ्वी के विभिन्न आवास हैं, जैसे जल हो गया, थल हो गया, वायु हो गया, मतलब नभ हो गया, उस तरह के विभिन्न आवास हैं, चाहे जहाँ पर कि तरह तरह के पादप और जंतु प्रजातियाँ उपस्थित होती हैं, इसी उपस्थिति को हम जैव विविधता कहते हैं। तो ये तो बात हुई जैव विविधता की। अब ये कई तरह की होती है, और आमतौर से अगर हम बात करते हैं तो तीन तरह की बायोडाइवर्सिटी के बारे में बात करते हैं। पहली होती है जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, सेकेंड है हमारी स्पीशीज, एंड थर्ड वन है हमारी इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो पहले हम बात करेंगे कि जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है वो क्या है। हमें मालूम है सूक्ष्म जीव जिसमें जीवाणु हैं उनसे लेकर जो हायर ऑर्डर के, जो हायर किंगडम में प्लांट एंड एनिमल्स आते हैं, जिन्हें कि हम अपने परिवेश में भी जो देखते हैं, पेड़ पौधे हैं, चाहे आम का है, नीम का है, या तुलसी है, या हम जीव जंतु की बात करें तो हम पक्षी भी देखते हैं और हम स्तनधारी भी देखते हैं। तो ये जो हैं जितने भी जीव जंतु हैं उनका जो हर स्पीशीज़ का जो है एक जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, सूचना के विशाल भंडार होते हैं उसमें। जैसे कि मान लो हम बात करें तो जो जीन है, अगर हम माइकोप्लाज्मा यानी एक छोटे से फंगस के बारे में बात करें तो उसमें भी जो इनकी जीन की जो निर्धारित संख्या होती है जो कि कम से कम 450 से 700 होती है। अगर मक्खी फल जो ड्रोसोफिला है, जो फ्रूट फ्लाई है, उसमें ये 13,000 होती है। अगर हम चावल की वैरायटी की बात करते हैं, ओराइजा सटाइवा, क्योंकि इसका बॉटनिकल नेम है, उसमें भी करीबन 32,000 से 50,000 होती है। अगर ह्यूमंस की बात करें तो उसमें भी 35,000 से 45,000 तक ये जीन होते हैं। ये जीन केवल संख्या ही नहीं है बल्कि ये संरचना के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ये किसी भी समष्टि को अपने वातावरण में, पर्यावरण के साथ अनुकूलन करने में, और जो नेचुरल सिलेक्शन की बात है, ये प्रक्रम के प्रति जो अनुक्रिया करने के लिए सक्षम होते हैं, सहायकता करते हैं। और किसी भी प्रजाति में अगर अधिक आनुवंशिक भिन्नता पाई जाती है तो वो क्या करती है कि वो परिवर्तित जो पर्यावरण है उसमें भी अपने आप को ढाल सकती है, उसके उसमें सर्वाइवल उसके चांस उसके बढ़ जाते हैं अगर वो उसको अपने उसके जो जीन्स हैं वो ही उस तरह से चेंज होते हैं, ट्रांसफॉर्म होते हैं कि वो अगले उस तरह के पर्यावरण में अपने आप को अनुकूल कर पाए। जो स्पीशीज है उसमें जिनकी कम आनुवंशिक रूप से अगर फसलें हैं, जिनका अभी कोई यूज नहीं लेकिन आगे वो कई बार बहुत ही बेनिफिशियल क्रॉप्स के रूप में भी आती हैं, और लेकिन ये जो स्पीशीज हैं इनमें कम विविधता वाले जो आनुवंशिक रूप में समान पौधों के फसल के पौधों में आनुवंशिक समानता का कारण होती है, और ये समानता एक समान जो गुणवत्ता वाले बीज हैं उत्पन्न करने के लिए ज़रूरी होती है। लेकिन आंशिक आनुवंशिक रूप से अगर हम समानता देखते हैं तो स्पीशीज में जो परिवर्तनशील पर्यावरणीय अनुकूलन है उसमें भी को करने के लिए भी रुकावट पैदा करती है, क्योंकि सभी पौधों में अगर जो प्रतिरोध का स्तर जो है लगभग समान, क्योंकि हर कोई अब जिस माहौल में रह रहा होता है उससे अपने को बदलना नहीं चाहता है, लेकिन फोर्सफुली अगर बदलना पड़ता है तो उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस, कुछ ना कुछ रेजिस्ट हमें देखने को मिलता है। तो इस प्रकार हम जैसे हम बात करें तो इंडिया में एग्जाम्पल ले रहे हैं हम चावल का, तो कम से कम 50,000 स्पीशीज हैं वो धान की स्पीशीज पाई जाती हैं, और अगर आम की हम बात करें तो 1,000 स्पीशीज आम की हमारे भारत में पाई जाती हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आनुवंशिक विविधता है वो पौधों में, जानवरों में और सूक्ष्म जीवों की जो स्पीशीज हैं, जितनी प्रजातियां हैं उसमें निहित जीन की विविधता को दर्शाती है। और अगर हम इंडिविजुअल लेवल पर बात करें तो नया आनुवंशिक परिवर्तन जीन और गुणसूत्री उत्परिवर्तन के कारण होता है, यानी म्यूटेशन के कारण होता है, नेचुरल सेलेक्शन भी होता है, क्योंकि डार्विन की थ्योरी के हिसाब से जो सक्षम होते हैं वो ही सर्वाइव करते हैं और जो अक्षम होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। हमको ये पता है कि दो लोग अगर एक ही माँ के दो बच्चे हैं तो वो भी समान नहीं होते, उनमें भी कुछ अंतर होता है, जबकि पेरेंट तो एक ही हैं लेकिन फिर भी वो अलग-अलग होते हैं। तो ये जो अंतर है वो एक ही जीन के विभिन्न संस्करण के कारण भी की संरचना में भी हो सकता है और संपूर्ण जीन में भी हो सकता है, या फिर कुछ क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर में भी हो सकता है। तो जो अंतर प्रजनन करने वाली जो समष्टियां हैं या स्पीशीज हैं, कम्युनिटी हैं, उसमें जो उपस्थित जीन जेनेटिक डाइवर्सिटी है जिससे कि जीन पूल का निर्धारण करता है, जिससे और ये जो चयन है कुछ विशिष्ट जेनेटिक जो दायित्व है उसको पूरा करने के को बढ़ावा देता है, यानी कोई नई स्पीशीज का उद्भव होने की बात है ये। और इस तरह से जीन पूल की जो आवृत्ति है उसमें परिणाम स्वरूप बदलाव होते जाते हैं, और ये जो है जीन जेनेटिक डाइवर्सिटी वो जीवधारियों में अनुकूलन के आधार पर रचना करता है। और भारत में अगर बात करें तो जेनेटिक डाइवर्सिटी भारत में बहुत ज़्यादा है, और इससे क्या इसे उच्च फसल आनुवंशिक विविधता का वैविलोप केंद्र भी माना जाता है। वैविलोप एक एग्रोबॉटनिस्ट थे रशियन, जिनके नाम पर ये नाम दिया गया है, और उन्होंने विश्व भर में 1950 में कृषिक पादपों के उद्भव के ऐसे 8 केंद्रों की पहचान की थी। अब हम बात करते हैं स्पीशीज डाइवर्सिटी की। इसका मतलब क्या है कि जो किस कोई भी भौगोलिक क्षेत्र है उसमें कई किस्म की जो स्पीशीज हैं वो मिल पाई जाती हैं, और स्पीशीज विविधता को हम मापते हैं स्पीशीज रिचनेस यानी स्पीशीज समृद्धि के तौर पर, स्पीशीज बाहुल्य यानी स्पीशीज अबंडेंस के रूप में, और तीसरा हम टेक्सोनॉमिक या फाइलोजेनिक डाइवर्सिटी के आधार पर देखते हैं। अब स्पीशीज रिचनेस क्या है कि कोई एक निर्धारित क्षेत्र है जिसमें कि विभिन्न स्पीशीज की संख्या, प्रजातियों की संख्या स्पीशीज रिचनेस को दर्शाती है। और जो स्पीशीज अवेंडेंस है, मतलब कि जो प्रजातियां हैं उनकी वो अपेक्षित संख्या को दिखाती है। जैसे कि एग्जांपल लें कि एक क्षेत्र में जो पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, वो कहीं एक क्षेत्र में कम हो सकते हैं, दूसरे क्षेत्र में की तुलना में वो अधिक हो सकते हैं। और जो टैक्सोनॉमिक वाला है, टैक्सोनॉमिक डाइवर्सिटी क्या है कि ये जो विभिन्न जो प्रजातियां हैं उनके विभिन्न समूहों के मध्य में एक जेनेटिक रिलेशन को दर्शाती है। यानी कि किसी भी क्षेत्र में जो उपस्थित स्पीशीज हैं उनकी प्रकार भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जब किसी क्षेत्र में वर्गीकरण से, यानी टैक्सोनॉमी से संबद्ध अनरिलेटेड, अगर टैक्सोनॉमिक अनरिलेटेड स्पीशीज आर प्रेजेंट में इन एन एरिया, द एरिया रिप्रेजेंट ग्रेटर स्पीशीज डाइवर्सिटी एज कम्पेयर टू एन एरिया रिप्रेजेंटेड बाय टैक्सोनॉमिकली रिलेटेड स्पीशीज। इसमें आपके बुक में एक ग्राफिक दिया है, फिगर दिया है 15.1, जो कि दर्शाता है स्पीशीज डाइवर्सिटी को प्रदर्शित करने वाले कुछ सैम्पल एरियाज हैं ए बी सी, जिन्हें आप देखेंगे। तो तीनों को अगर आप देखेंगे तो पहला जो है उसमें समान, मतलब पक्षी दिखाई देंगे, दूसरे वाले में भी है, लेकिन जो सी वाला है उसमें कई तरह के, विभिन्न तरह के जीव पाए जाते हैं। तो इसका मतलब है कि सी में जो जो सैंपल सी है, क्षेत्र एरिया, सैंपल एरिया जो सी वाला है उसमें स्पीशीज विविधता ज़्यादा है, क्योंकि ए और बी में सिर्फ पक्षी हैं लेकिन विभिन्न प्रकार के पक्षी हैं। एक में सेम पक्षी दिख रहे हैं लेकिन दूसरे में डिफरेंट हैं। लेकिन जब सी क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, सी सैंपल की अगर हम देखें तो ये इसमें आपको मैमल्स भी दिख रहे हैं, आपको इंसेक्ट भी दिख रहे हैं, आपको बर्ड्स भी दिख रही हैं। मतलब कि इसे कह सकते हैं कि ये जो है स्पीशीज विविधता इसमें उच्च है, क्योंकि इसे टैक्सोनॉमी के हिसाब से अनरिलेटेड स्पीशीज द्वारा दिखाया गया है। अब हम बात करते हैं कि अभी दुनिया भर में जो जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनकी कितनी प्रजातियां अब तक पता चल चुकी हैं। तो लगभग 1.7 मिलियन स्पीशीज तब तक ज्ञात हो चुकी हैं और अभी भी कई स्पीशीज की खोज जारी है। और अनुमान जो है वर्तमान का अगर देखें तो जो प्रजातियों की कुल संख्या है वो 5 to 10 million हो सकती है। और पूरे विश्व में अगर हम बात करें तो स्पीशीज विविधता का जो वितरण है वो समान नहीं है, कहीं बहुत ज़्यादा है कहीं बिल्कुल नहीं है। अगर हम ओवरऑल रीजनल जो स्पीशीज़ की बात करें तो वो उसका जो कंसंट्रेशन है वो इक्वेटोरियल रीजन में ज़्यादा है और टेंड टू डिक्रीज, जो उसका ट्रेंड है वो डिक्रीज होता है इक्वेटोरियल टू पोलर रीजन में, यानी पोलर रीजन में कम है। अगर हम ध्रुवीय क्षेत्र की जाएंगे तो वहाँ कम स्पीशीज मिलेंगी, लेकिन अगर हम उसी तरह से अगर हम लैंड इकोसिस्टम की बात करें, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो उधर भी अगर हम देखें तो जैसे अगर मैदान में स्पीशीज डाइवर्सिटी ज़्यादा है, अगर हम पहाड़ की तरफ जाएंगे तो उधर स्पीशीज डाइवर्सिटी कम होती जाती है। और दूसरे और भी कारण हैं, जैसे कि वर्षा की मात्रा है या मृदा में जो पोषक तत्व हैं वो भी स्पीशीज डाइवर्सिटी को प्रभावित करते हैं। और सबसे ज़्यादा अगर डाइवर्सिटी अगर देखनी है तो हमें मैरीन इकोसिस्टम में स्पीशीज रिचनेस ज़्यादा मिलती है। और जो भारत है वो भी जैव विविधता का देश है और दुनिया भर के जो 12 मेगा डाइवर्सिटी रीजन हैं, देश हैं, कंट्री हैं, उसमें ये शामिल होते हैं। अब हम बात करते हैं इकोसिस्टम डाइवर्सिटी की, जो कि इकोसिस्टम यानी पारितंत्र। पारितंत्रीय विविधता क्या है कि जो विभिन्न प्रकार के जो पारितंत्र हैं उनकी उपस्थिति को दिखाता है। और जैसे मान लीजिए हम एग्जाम्पल लें अगर साउथ इंडिया का, तो वहाँ पर वेस्टर्न घाट है तो उसमें बहुत सारी स्पीशीज डाइवर्सिटी है, वहाँ बहुत तरह तरह के जीव जंतु, पेड़ पौधे, पशु पक्षी मिलते हैं और अगर वहाँ रिच है। लेकिन अगर हम रेगिस्तान की बात करें, डेजर्ट की अगर हम बात करें, तो वहाँ पर स्पीशीज डाइवर्सिटी कम होगी। और अलग होगी, वहाँ के जो वहाँ पर हरे भरे पेड़ और ये सब मिलेगा, लेकिन वहाँ यहाँ पर उस तरह का नहीं होगा। पशु पक्षी और जो भी हैं या फिर जो पेड़ पौधे हैं उनमें काफ़ी डिफरेंस रहता है। इसी तरह से अगर हम बात करें मैरीन इकोसिस्टम की, तो उसमें भी कई तरह के फिशेस मिलती हैं, लेकिन अगर हम अगर रिवर की या पॉन्ड की बात करें तो उसमें जो फिश पाई जाती हैं वो अलग तरीके की फिश होती हैं। वो कह सकते हैं कि मैरीन और फ्रेश वाटर का जो इकोसिस्टम है उसमें जो पाई जाने वाली फिशेज हैं वो भी अलग अलग भिन्न भिन्न होती हैं। तो ये कह सकते हैं कि जो पारितंत्र के स्तर पर इस प्रकार की जो विभिन्नता है जो दिखाई देती है, वो डाइवर्सिटी ही हमारी इकोसिस्टम डाइवर्सिटी कहलाती है। और इसमें जो विविधता है वो पारितंत्र में और पर्यावास की विविधता के मध्य में एक व्यापक अंतर को भी दर्शाती है। और प्रत्येक जो पारितंत्र के अंदर जो घटित इकोसिस्टम सर्विस प्रोसेसेस हैं वो भी उसमें निहित होते हैं। जैसे अगर भारत में हम बात करें तो बर्फ से ढका हुआ हिमालय भी है, तो रेगिस्तान थार का मरुस्थल भी है, नीरज झाड़ झंकार से अगर लेंगे कटीले झाड़ियों से लेकर घास के मैदान हैं, ह्यूमिड वेटलैंड भी हैं हमारे यहाँ, और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी हैं। जो केरला वगैरह का देखें तो वहाँ बहुत हरे भरे जंगल हैं, हरियाली बहुत ज़्यादा है। कोरल रीफ से लेकर अंडमान में जाएँ तो कोरल रीफ में दिखते हैं से लेकर गहरे समुद्र हिंद महासागर अगर की बात करें तो वहाँ पर अलग तरह की डाइवर्सिटी हमें मिलेगी। तो ये कह सकते हैं कि बहुत तरह के हमारे जलीय पारितंत्र पाए जाते हैं, और प्रत्येक के अंदर जो पर्यावास की अत्यधिक किस्में हैं और जो जैविक और अजैविक घटक हैं उनके भीतर और इनके मध्य जो इंटरेक्शन है वो शामिल होता है। अगर वेस्टर्न घाट की बात करें और नॉर्थ ईस्ट रीजन की अगर बात करें तो वो बहुत अधिक डाइवर्सिटी संपन्न क्षेत्र कहलाए जाएंगे, डाइवर्सिटी रिच रीजन्स हैं ये। और इसमें जो स्पीशीज़ पाई जाती हैं वो अधिकतर स्पीशीज़ स्थानीय होती हैं, वो मतलब केवल उसी एरिया में पाई जाती है, यानी केवल भारत में ही पाई जाएंगी और वहाँ वो भी उसी जगह पर पाई जाती हैं। और जो एंडेमिक स्थानीय स्पीशीज़ हैं वो मुख्य रूप से क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट में हैं, वेस्टर्न घाट में हैं, नॉर्थ वेस्ट हिमालय रीजन में हैं और अंडमान निकोबार में ही केंद्रित हैं। इसीलिए कह सकते हैं कि जो भारत में पाए जाने वाले फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो कम से कम 30% जो हैं वो हमारे 33% हमारे एंडेमिक होते हैं, और स्थानीय जो भारतीय क्षेत्र है वो स्थानिक जीवों के लिए भी बहुत फेमस है। जैसे कि अगर हम बात करें कि जो इनवर्टिब्रेट्स हैं वो लगभग उसमें 53% जो फ्रेश वाटर की फिश है, 60% एम्फीबियन और 36% जो रेप्टाइल्स हैं और 10% जो हमारे मैमल्स हैं वो एंडेमिक हैं। तो इंडिया का इंडियन रीजन जो है वो बहुत ही नोटेबल है, नोटिशियबल है एंडेमिक स्पीशीज़ के लिए, फोना के लिए। और अब हम बात करते हैं हॉट स्पॉट की। तो हॉट स्पॉट क्या होता है कि अ रीजन मस्ट have lost at least 70% of its original natural vegetation. अगर किसी क्षेत्र का 70% से करीबन वेजिटेशन जो नेचुरल वेजिटेशन है वो ख़त्म हो चुका है तो उस, और वो क्यों, क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटीज़ के चलते ख़त्म हुआ है, इसीलिए इस एरिया को हम बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स कहते हैं। और वर्ल्ड में कम से कम 30 जो हैं ऐसे रीजन्स हैं जिन्हें हम बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के नाम से पहचानते हैं। तो जैव विविधता न केवल पृथ्वी के भौगोलिक क्षेत्रों में समान रूप से वितरित होती है, बल्कि विश्व के जो कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो कि जैव विविधता के मामले में बहुत ज़्यादा समृद्ध हैं। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो वेस्टर्न घाट है, तो इनको हम कहते हैं मेगा डाइवर्सिटी रीजन कहते हैं, और इसे ही हम हॉटस्पॉट भी के नाम से भी जानते हैं। और भारत में दुनिया का 2.4% भाग जो है वो हॉटस्पॉट है। और एक जो ब्रिटिश इकोलॉजिस्ट थे नॉर्मन मायर्स, उन्होंने इस हॉट स्पॉट की कॉन्सेप्ट को 1988 में विकसित किया था. क्यों? ताकि उसी स्थान जगह पर यथास्थान संरक्षण के लिए जो प्राथमिक क्षेत्रों को नामित करने के लिए ये किया गया था. और उनके अनुसार जो हॉट स्पॉट है वो पृथ्वी पर जैव विविधता के जो सबसे समृद्ध और संतापन संग्रह हैं. और कोई एक क्राइटेरिया भी फिक्स किया गया था हॉट स्पॉट के लिए, जैसे कि इस क्षेत्र में कम से कम 1500 से अधिक एंडेमिक स्पीशीज, यानी क्षेत्रीय लोकल स्पीशीज वहाँ होंगी, और 70% से ज़्यादा इनका जो नेचुरल हैबिटेट है वो ख़त्म हो चुका होगा. तो आज अगर हम दुनिया की बात करें तो दुनिया भर में 30 ऐसे हॉट स्पॉट्स की पहचान की गई है जहाँ असाधारण जैव विविधता है. वो इस हॉट स्पॉट इन क्षेत्रों की विशेषता होती है. और टोटल 30 जो हमारे हॉट स्पॉट हैं उनमें जो टोटल हमारा एरिया, लैंड का जो एरिया है उसका 1.5% वो है भाग है. और यहाँ इसमें इन एरियाज में 44% हमारे प्लांट्स और 35% हमारे स्थलीय जो वर्टिब्रेट्स हैं वो पाए जाते हैं. और भारत में जो है वो विश्व में 30 हैं और भारत में 4 हैं बायोडायवर्सिटी हॉस्पिटल हॉट स्पॉट्स. जैसे फर्स्ट है हमारा हिमालयन रीजन है, दूसरा हमारा वेस्टर्न घाट है, तीसरा हमारा इंडो बर्मा रीजन है, और चौथा हमारा सुंदरबन है. और इनमें इन सभी हॉट स्पॉट्स में बहुत सारी एंडेमिक स्पीशीज रहती हैं. अगर हम ईस्टर्न हिमालय की बात करें जो कि उत्तर पश्चिम भारत और भूटान तक फैला हुआ है, और इसमें 1780 से लेकर 2500 मीटर तक की ऊंचाई पर समशीतोष्ण वन पाए जाते हैं. और कई और गहरी और अर्ध प्रत्यक्ष घाटियां असाधारण रूप से पाई जाती हैं, इसमें कि बहुत सारे स्थानिक पादप स्पीशीज हैं जिससे ये समृद्ध है. और अगर हम पश्चिम भारत की बात करते हैं तो ये भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिमी तट के समांतर है. और इस ये पता है महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में लगभग 1600 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है. और कम ऊंचाई पर पाए जाने वाले अधिकतर वन जो हैं वो सदाबहार वन होते हैं, जबकि 500 से 1500 मीटर की ऊंचाई पर जो पाए जाते हैं वन वो अर्ध सदाबहार वन पाए जाते हैं. अब हम बात करते हैं कि ये जो बायोडाइवर्सिटी है वो इतनी महत्वपूर्ण क्यों है. क्योंकि जो मनुष्य है वो अपनी जीविका के लिए, स्वास्थ्य के लिए, खुशहाली के लिए, सांस्कृतिक विकास के लिए प्रकृति पर निर्भर होता है. आप देखें हमें बायोटिक रिसोर्सेस हैं, भोजन है, फल है, बीज है, चारा है, औषधि हैं, और बहुत सारी सर्विसेज हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमें नेचर से ही मिलती हैं. और जीवन की जो विशाल विविधता है वो बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस है, जो कि पारितंत्रों और प्राकृतिक प्रक्रियाओं को लचीलापन प्रदान करती है. और इसीलिए जो बायोडाइवर्सिटी है उसका जो सोशल और कल्चरल दृष्टि से ये बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है. तो इसका मूल्य क्या है, यानी वैल्यू क्या है इस बायोडाइवर्सिटी की, कि इस जो बायोडाइवर्सिटी है या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है वो उसकी उनसे जो लाभ मिलते हैं वो मुख्यतः तीन तरह से कैटेगराइज किए जाते हैं. पहला इकोसिस्टम सर्विसेज हो गया, दूसरा बायोलॉजिकल रिसोर्सेज हो गया, और तीसरा हो गया सोशल बेनिफिट्स. तो इकोलॉजिकल सर्विसेज क्या है कि जो ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो क्या करते हैं कि काफ़ी चीज़ें मुफ्त में ही जो इकोलॉजिकल सर्विसेज प्राप्त करते हैं, जो कि पारितंत्र के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए ज़रूरी है, रिस्पॉन्सिबल है. और ये जो बायोलॉजिकल इकोसिस्टम के साथ साथ बायोडाइवर्सिटी के साथ साथ जो इंडिविजुअल स्पीशीज़ है वो भी क्या करती है, उससे वस्तुओं और सेवाओं के रखरखाव और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है या सस्टेनेबल पोषण है उसके उपयोग के लिए ज़रूरी होती है. जैसे कि जो जल संसाधनों का संरक्षण की बात हम करते हैं, क्योंकि जो नेचुरल वेजिटेशन है वो जो पेड़ पौधे हैं वो क्या करते हैं कि हमारे जल चक्र को संतुलित बना का बनाए रखने में संतुलन बनाने में कैसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब जो वनस्पति है वो प्राकृतिक वनस्पति से हम वाटर साइकिल को मैनेज करते हैं। जैसे बाढ़, अगर पेड़ पौधे नहीं हैं किसी क्षेत्र में और बारिश आती है तो वो पानी को पेड़ों की जड़ें अब जकड़ के रखती हैं, और उससे क्या होता है कि जो भूमि की ऊपरी परत है वो बह नहीं पाती है, तो इस तरह से वो हेल्प होती है। और एक बफर जोन का भी निर्माण करते हैं, इससे कि जो जल है वो ऐसे नहीं बह जाता है, मिट्टी की ऊपरी परत भी बचाए रखती है, और ये जो भूमि का जल का जो लेवल है वाटर टेबल भी बढ़ता है इससे। और वनस्पति के हट जाने से क्या होता है, बांधों में या जलाशयों में क्या होता है, गाद जो है कीचड़ या मिट्टी जम जाती है, और वेटलैंड और जो वन है फॉरेस्ट है वो क्या करते हैं कि जो जल परिष्कृत तंत्रों के रूप में काम करते हैं, और जो मैंग्रोव हैं यानी वेटलैंड्स जो हैं वो गाद को रोक कर समुद्री पारितंत्र में जाने से रोकते हैं, तो उससे क्या होता है इसका प्रभाव कम हो जाता है। और सेकेंड जो करती है पारितंत्र, जो सोशल सर्विस होती है इसमें, इकोसिस्टम सर्विस में, वो होता है सॉइल प्रोटेक्शन की जा है। तो जो बायोलॉजिक बायोडायवर्सिटी है वो मृदा के संरक्षण में नमी की पोषक तत्वों के की मात्रा को संतुलित बनाए रखने में मदद करती है। और अगर उस किसी भी क्षेत्र में अगर ये पेड़ ना हो, वनस्पति ना हो, तो क्या होता है कि सॉइल इरोजन में तेजी आती है, और उत्पादक सॉइल इरोजन होता है तो जो ऊपरी परत है मृदा की वो नष्ट हो जाती है, और ऊपरी परत ही जो उपजाऊ होती है तो क्या होता है कि उत्पादकता जो है उसमें कमी आ जाती है, बंजर भूमि हो जाती है। अगर सडनली कोई बाढ़ आ जाए तो उससे भी उसमें अचानक से बाढ़ आने शुरू हो जाती है, और जो क्योंकि पेड़ों की जड़ें जो है वो क्या करती है कि जो जल है उसको सब सॉइल में पहुंचाने का काम करती है, और जो रूट सिस्टम है वो क्या करता है मिट्टी से के अंदर से जो खनिज पोषक तत्व हैं उनको पौधे तक के दूसरे भागों में पहुंचाता है, ताकि वो फोटोसिंथेसिस हो और उनका भोजन बनाने की प्रक्रिया होती है। तो अगर ये नहीं है तो वन अगर नहीं है, वनस्पति अगर नहीं है, तो मृदा का संरक्षण करना भी कठिन हो जाता है। ये जो इकोसिस्टम सर्विसेज में जो फ्री सर्विस में है, ये पोषकों का संग्रहण और चक्रण भी होता है इसमें, यानी कि जो इकोसिस्टम है वो वायुमंडल और मृदा के बीच में जो पाए जाने वाले पोषक तत्व हैं, पोषक हैं, उनको रिसाइकल करने में मदद करती है, और पादप जो है क्या कहते हैं पोषकों को ग्रहण करते हैं, और उसके बाद में वो जो पोषक हैं वो न्यूट्रिएंट साइकिल के थ्रू दूसरे खाद्य श्रृंखलाओं में भी जाते हैं, क्योंकि हम लोग भी जो पौधे हैं वो डायरेक्टली इन न्यूट्रिएंट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, और उनका जो फूड बनता है, उन्होंने जो भोजन बनाया है या उन्होंने जिस तरह से वापस दिया, उस दूसरे रूप में ही हम उसको कंज्यूम करते हैं। तो ये कह सकते हैं कि ये पोषक खाद्य श्रृंखलाओं के आधार की रचना भी करते हैं, और विभिन्न प्रकार के जीवों द्वारा इन्हें उपयोग में लाया जाता है। मृदा में जो पोषक पदार्थ हैं वो फिर से आ जाते हैं, और क्योंकि हमने इसके बारे में जब हमने बायोलॉजिकल जियो केमिकल साइकिल्स की बात की थी तब हमने इसमें बात की थी, और मृदा में जो पोषक तत्व फिर से आ जाते हैं, मृत और अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं वो भी अपघटित होकर वापस साइकिल को कंप्लीट करते हैं, और इस ये जो अपघटन होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू होता है, और इसके बाद इन पदार्थों को जो है अर्थफॉर्म जैसे छोटे छोटे जो अन्य प्राणी हैं वो ग्रहण कर लेते हैं, और उससे क्या होता है कि जो हमारी सॉइल है उसको भी वो एरेटेड बना देते हैं, वायवीय कर देते हैं, और पोषक तत्वों को सहजता से उपलब्ध हो जाए पौधे को, इसमें वो मन, मन इसमें वो मदद करते हैं। पारितंत्र के जो है इसमें प्रदूषण में भी कमी आती है, अगर पेड़ पौधे हैं तो प्रदूषण भी कम होगा, और इकोसिस्टम और जो इकोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं वो वायुमंडल के जो गैसीय संगठन को बनाए रखने में मदद करती है। अपशिष्ट पदार्थों के अपघटन में हेल्प करती है, और जो वेटलैंड के पॉल्यूटेंट्स हैं उनके अपघटन में, और उन्हें अवशोषित करने की क्षमता है इनमें, इसलिए ये खास तौर से VOD की को कम करने में, हानिकारक सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने में हेल्प करती है। और जब प्रदूषण की मात्रा अधिक है हो जाती है, अधिक मात्रा क्या होता है, इकोसिस्टम और उसके जो जीव जात है उनका जो किंगडम है, बाय प्लांट एंड एनिमल किंगडम की जो यूनिटी है उसके लिए भी हानिकारक हो जाता है अगर इनका ये इम्बैलेंस हो जाते हैं। हम देखते हैं कि अगर हमारे वायु में प्रदूषक तत्व ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो हम देखते हैं ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाए सल्फर के जो प्रोडक्ट्स हैं कंपाउंड्स जब वायु में मिल रहे हैं तो हम उसका इम्पैक्ट देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग के, उसमें ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रहा है हमारा। तो इस तरह से ये प्रदूषण, अगर वेजिटेशन है, इकोसिस्टम सर्विसेज हमारी वेल डिफाइंड है तो इसमें हमें मदद मिलती है प्रदूषण को कम करने में। क्लाइमेट को भी ये स्टेबिलिटी देता है क्योंकि जो वेजिटेशन है वो सूक्ष्म माइक्रो और मैक्रो जो लेवल पर जलवायु को प्रभावित करती है, और बढ़ते हुए जो प्रमाण ये बताते हैं जो कि जो अगर डेंस फॉरेस्ट हैं तो वो क्या करते हैं, जल वाष्प को स्थिर एक दर से जो पुनः चक्रित करते करके क्या करते हैं, आसपास के क्षेत्र में वर्षा को बनाए रखने के लिए सहायता करते हैं। और जो वेजिटेशन है वो माइक्रो क्लाइमेट पर भी स्लो प्रभाव डालती है, और वनस्पति का जो कूलिंग इफेक्ट है वो आप महसूस करते हैं, अगर कहीं अच्छी हरियाली है तो आपको कूलिंग का एक जो अनुभव होता है, और जहाँ अगर पेड़ पौधे नहीं हैं, वेजिटेशन नहीं है और खूब काफ़ी अगर सूरज की धूप लग रही है तो आप उसमें कंपैरिजन करें तो आपको पता लगेगा कि जहाँ पर वेजिटेशन है वहाँ की लाइफ थोड़ी आरामदायक है, लेकिन अगर वेजिटेशन नहीं है तो वहाँ की लाइफ जो है वो कष्टदायक है। उसी तरह से जीव अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए भी माइक्रो क्लाइमेट पर निर्भर करते हैं। पारिस्थितिक प्रक्रियाओं का रखरखाव होता है, यानी पक्षियों जो परभक्षी हैं उनकी विभिन्न जो स्पीशीज़ हैं वो इंसेक्ट्स और पेस्ट को नियंत्रित करने में सहायता करती हैं, और पक्षी हो गए या फिर जो नेक्टर लविंग इंसेक्ट्स जैसे हनी बी हो गई, आपकी बटरफ्लाई हो गई, वो भी प्राकृतिक रूप से इन पर्यावासों में अपना बसेरा करती हैं और जनन करती हैं और पॉलिनेशन में हेल्प करती हैं। और कुछ जो प्राकृतिक पर्यावास हैं जैसे मैंग्रोव हो गए या वेटलैंड हो गए, उसमें वन्य जीवों की आबादी के अत्यंत महत्वपूर्ण चरण जैसे एग लेइंग का होता है, अंडे देने की जगह को सुरक्षा मिलती है, और अगर ये नहीं है तो उनकी प्रजाति को विलुप्त होने में समय लगेगा क्योंकि उन्हें जो पर्यावास चाहिए, समुचित पर्यावास चाहिए, वो नहीं मिलेगा। आर्थिक महत्व के जैविक संसाधन भी मिलते हैं, जैसे वनों से हमें खाद्य मिलता है, रेशे मिलते हैं, औषधि मिलती हैं, ईंधन की लकड़ी हो गई, सजावटी पौधे हो गए, वो हजारों हजार स्पीशीज़ हैं जिन्हें कि हम मनुष्य कम से कम 5,000 स्पीशीज़ का इस्तेमाल पादप स्पीशीज़ों का करता है, और दुनिया भर में अगर 20 स्पीशीज़ ऐसी हैं जो कि दुनिया की जनसंख्या के बहुत बड़े भाग को, हिस्से को भोजन प्रदान करती है, और केवल 3 या 4 ही ऐसी उपज हैं जो कि अधिकतर आबादी द्वारा, दुनिया की अधिकतम आबादी द्वारा इसको उपयोग किया जाता है, जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, मक्का हो गया, चना हो गया। और पौधों जो प्राणियों की बहुत बड़ी संख्या जो है से जो प्राप्त होने पदार्थ हैं उनको हम अपने बीमारियों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, और भारत में तो एक औषधीय पौधों का उपयोग करने के का एक काफ़ी आयुर्वेद जिसे हम बोलते हैं वो विकसित है, और जड़ी बूटियों से ही उसमें चिकित्सा होती है। मतलब आयुर्वेद का मीनिंग क्या है कि जीवन का विज्ञान, और ऐसा हम मानते हैं कि जो हमारे देश की जो 70% पॉपुलेशन है वो हर्बल मेडिसन्स पर ही निर्भर होती है, और इसमें करीबन करीबन 7,000 से अधिक स्पीशीज औषधीय पौधे जो हैं उन जो प्लांट स्पीशीज हैं उनका उपयोग मेडिसिनल वैल्यू के रूप में किया जाता है। उसी तरह से अगर हम वुड की बात करें, लकड़ी की बात करें, तो लकड़ी भी एक बेसिक मटेरियल है जो कि दुनिया भर में फर्नीचर बनाने में, कंस्ट्रक्शन के काम में उसका उपयोग किया जाता है। और लकड़ी जो है ईंधन का भी एक बहुत बड़ा जरिया है, यानी हमारे खाना बनाने में हर तरह के कामों में हम उसका इस्तेमाल करते हैं। और जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं उसमें तो लकड़ी और बांस का उपयोग बहुत ज़्यादा होता है, और हम पेपर भी वुड से ही बनाते हैं। और जैसे कुछ रेशे हैं प्लांट फाइबर्स, जैसे नारियल का हो गया, सन है, जूट है, पटसन है, कपास है, ये भी पारंपरिक स्रोत हैं हमारे फाइबर्स को प्राप्त, रेशों को प्राप्त करने के लिए। और फसलों में सुधार के लिए प्रजनन सामग्री के रूप में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं, यानी कि उगाए हुए जो फसली पौधे हैं उनकी जो वाइल्ड जो रिलेटिव्स हैं उनमें बहुत बहुमूल्य जीन पाए जाते हैं, जिनको कि हम क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम्स के रूप में उनका महत्व है। और कई जो दूसरे फसली पौधे हैं, वन्य पौधे हैं, उनके अनुवंशिक पदार्थ और जीन का उपयोग फसल का उत्पादन बढ़ाने के लिए, प्रतिरोधक क्षमता में सुधार के लिए करते हैं, के उद्देश्य से वर्तमान जो फसल है उनके नई स्पीशीज तैयार करने के लिए किया जाता है। और जैसे हम बात करते हैं कि एशिया में जो चावल उगता है उसका जो एकल वन्य धान की किस्म के द्वारा प्रदान जीन के कारण ही वो चार प्रमुख जो रोग हैं चावल के, धान के रोग, उनसे मुक्त है। और फ्यूचर रिसोर्सेज के रूप में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। कुछ विकसित स्पीशीज जो वर्तमान में उगाई जा रही हैं उन पर अत्यधिक अनुसंधान और सेलेक्टिव प्रजनन का उपयोग किया गया है, और वर्तमान में कई उपयोगी जो फसलें हैं भविष्य में वो महत्वपूर्ण फसल बनाने की क्षमता रखती हैं। स्थानीय लोगों द्वारा अक्सर जंगली पौधों का उपयोग किया जाता है, और कब जो प्रयोग है उनका, जो उनके पास जो ज्ञान है उसको हम नए प्लांट उत्पादों को विकसित करने के लिए कर रहे हैं।